Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
सच्चिदानन्द भगवान् की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। कठोपनिषद के मंगलाचरण का कल हम लोगों ने इस मंत्र से विचार किया। जैसा कठोपनिषद का परिचय आप लोग प्राप्त कर रहे थे, इस उपनिषद का कथानक बहुत ही रोचक है। अन्य उपनिषदों की बजाय इसकी यही बड़ी विशेषता है, व्यवहार और परमार्थ दोनों का ही इसमें सुंदर विश्लेषण हुआ है। कठोपनिषद का प्रारंभ एक ऐसे ब्राह्मण के यज्ञ के द्वारा हो रहा है, जो यज्ञ का कर्म तो कर रहे हैं परंतु यज्ञ में दी जाने वाली जो दक्षिणा है उसमें समीचीनता नहीं देखी जा रही है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं देखा जा रहा है और उसी को लेकर के ब्राह्मण के बालक के भीतर में भी एक विचार आ जाता है। उस प्रसंग को इस उपनिषद के माध्यम से उत्थापन करके उस बालक और यमराज का संवाद इससे विस्तार में चलेगा। जितना होगा इस मंच से विचार करने का प्रयास किया जाएगा। मन में आया था कि संक्षेप में सारांश रूप में इस उपनिषद को सुनाया जाए, मगर कुछ साधकों ने कहा कि उसकी बजाय क्रमशः सुनाया जाए, जितना हो जाए उतना अच्छा है, माने छूट जाएगा तो और आने का चांस भी रहेगा, इसलिए चलने दीजिए जितना हो जाए। अजरामरवत प्राज्ञ विद्याम अर्थम च चिंतयत्। ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरित। ऐसा वर्णन आता है, विद्या का और अर्थ का जब संचय करते हैं तो मृत्यु को भूल जाना चाहिए कि हम अर्थ संचय कर रहे हैं मगर मर जाएंगे, इसको कौन भोगेगा, यह व्यक्ति कभी नहीं सोचता है। ऐसे ही विद्या अध्ययन करने में भी मृत्यु को भूल जाना चाहिए। मानो हम अजर अमर हैं और इस रफ्तार से चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। ग्रहीतैव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। मगर कोई धर्म का कार्य करना है तब मृत्यु को मत भूलो, उसको याद करो। ऐसा सोचो कि मृत्यु ने हमारे केश पकड़ रखे हैं, न मालूम कब झटका मार दें, इसलिए धर्म कार्य को शीघ्र करना है। परंतु विद्या अर्जित करने में और धन संचित करने में, दो कार्यों में मृत्यु को भूल जाना चाहिए, नीतिकार ऐसा बोलते हैं। इसलिए हमें भी बिल्कुल इसी नीति का पालन करते हुए ही चलना पड़ेगा। जिस विद्या का हम अर्जन करने जा रहे हैं, जितना ईश्वर के संकल्प से हम बढ़ सकेंगे उतना बढ़ेंगे, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप अपनी गति से चलने का प्रयत्न करेंगे। कथानक बड़ा सुंदर ढंग से प्रारंभ होता है, ओम उषन हवई वाजस्रवसः सर्ववेदसम ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आसो तमह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशः सो अमन्यतः पीतोदका जगदत्रिणा दुग्धदोहा निरेन्द्रियाः आनंदा नाम ते लोका तांस गच्छति ताददत्। बड़ा सुंदर प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। ओम शब्द के द्वारा भगवान का स्मरण किया जा रहा है, क्योंकि ओम मांगलिक भी माना जाता है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावे तो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका उभौ। ये दो शब्द मांगलिक माने जाते हैं, कल्याणकारी माने जाते हैं, ओम और अथ शब्द। आप जब गीता पाठ करते होंगे तो प्रत्येक अध्याय का प्रारंभ करते समय अथ शब्द का प्रयोग होता है। अथ प्रथमो अध्याय, अथ द्वितीयो अध्याय, अथ तृतीयो अध्याय, ये अथ शब्द मांगलिक है, इसलिए इसके द्वारा शुभ कार्य का प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे ही ओंकार शब्द मांगलिक है, कल्याणकारी है, इसलिए ओम के द्वारा, ओम प्रतिपाद्य जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर को हम स्मरण करके मंगल की कामना करके और इस उपनिषद को प्रारंभ करने जा रहे हैं। उषन हवई वाज सर्वस्व सर्व वेदसम ददो। ये प्रसिद्ध है प्रसिद्ध कि वाज सर्वस उषन माने कामना से युक्त है, सर्व वेदसम ददो संपूर्ण धन को दे दिया, तस्य नचिकेता नाम आस उसका प्रसिद्ध पुत्र नचिकेता था। इस प्रकार इस कथा का प्रारंभ हो रहा है। यहां जो व्यक्ति ने धन का दान किया है उसका नाम बताया वाजस्रवस है, और कैसा है यह बताया है उषन, क्या किया है वो बताया सर्व वेदसम ददो। कौन व्यक्ति है? वाजश्रवस, वाजश्रवा का पुत्र। वाजश्रवा व्यक्ति नाम के प्रसिद्ध कोई महान पुरुष हुए हुए जिनकी संसार में बड़ी प्रसिद्धि थी। वाज का अर्थ होता है अन्न और श्रव का अर्थ होता है यश। माने जिसने अन्न का दान किया है और अन्न दान करने से दुनिया में जिसका यश फैला, जिसकी प्रसिद्धि, जिसकी कीर्ति प्रसृत हुई, ऐसा अन्न दान से ही जो व्यक्ति प्रसिद्ध था उसका नाम था वाजश्रव। और उस वाजश्रव के पुत्र का नाम वाजश्रवस, और वाजश्रवस के पुत्र का नाम नचिकेता। माने वाजश्रवा का पौत्र नचिकेता। यहां वाजश्रव का जो पुत्र है वाजश्रवस, वो कैसा है? ओसन, वो कामना से युक्त है। कामना से युक्त होकर के यज्ञ कर रहा है और यज्ञ में सर्व वेद सम ददो, सब दान किया है। कामना किस बात की? इस उपनिषद में वो प्रसंग नहीं है, शतपथ ब्राह्मण के अंदर वो प्रसंग आया है। ये जो वाजश्रवस है एक क्रोधी ब्राह्मण है, स्वार्थी ब्राह्मण है, कामना युक्त ब्राह्मण है। एक बात को याद रखिए कि जीवन में कोई एक बुराई यदि आ जाती है तो वह श्रृंखलाबद्ध सैकड़ों बुराइयों को जीवन में ले आएगी। यह नियम है, एक भी बुराई आ गई है तो अनेक बुराइयों को बुला लेगी, और एक अच्छाई अपने जीवन में पकड़ लेंगे उसके पीछे 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 और कई अच्छाइयां आ जाएगी। यह नियम होता है, परंतु अच्छाई आने की बजाय बुराइयों का आना आसान है, पतन सहज होता है। सीढ़ियों पर चढ़ना कठिन है मगर गिरना कठिन नहीं है। लुढ़केगा तो गिरते 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 नीचे तक पहुंच जाएगा। हालत बदतर हो जाए कि अलग बात है, पतन सहज होता है। ऊपर उठाना कठिन है, गिरना आसान है। एक महान पुरुष बहुत अच्छा कोई श्लोक सुनाया करते थे। एक भिखारी था, किसी राजा के पास में गया और भीख मांगी। उस भिखारी को देख करके राजा के मन में आया, बड़ा हष्टपुष्ट शरीर है, जवान है, कुछ करने की शक्ति मालूम पड़ रही है, और ऐसी स्थिति में भी भीख मांग रहा है, और देखने से लगता है कि सद आचरण वाला व्यक्ति नहीं है, इसके आचार विचार गंदे हैं, खान पीन अच्छा नहीं है। उसकी शक्ल देख करके राजा उसको पूछने लगे, भिक्षो मांस निवेशनम प्रकृषे किन तेन मध्यम बिना। राजा कहते, अरे भिखारी, तुझे देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मांस भक्षी व्यक्ति है, मांस सेवन करता है, तुझे देखने से मुझे ऐसा लग रहा है। वो भिखारी कहने लगा, किन तेन मध्यम बिना। ओहो राजन, ये क्या पूछने की बात? बात सच्ची तो ये है कि मांस सेवन का आनंद तब आता है जब शराब की बोतल, शराब का पाउच साथ में हो। किन तेन मध्यम बिना। तो राजा कहने लगे, अच्छा, मध्यम चापि तव प्रियम, तुझे श्राप भी अच्छी लगती है। वो भिखारी कहने लगा कि हां राजन, प्रियम अहो वारांगना भी सह है, बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, लेकिन उसकी प्रियता तब और बढ़ जाती है जब वारांगनाएं साथ में हो। अरे तेरे में ये बुराई भी, तेषाम अर्थ रुचि कुतस्तव धनम, वारांगनाओं को अर्थ रुचि होती है, उन्हें धन प्रिय होता है, तुम्हारे पास धन कहां से आया, तू तो भिखारी है। वो भिखारी कहने लगा द्यूतेन चोरेन वा, इसमें क्या है राजन, जुआ खेल लेता हूं, और यदि वहां पराजित हो गया तो चोरेन चोरी कर लेता हूं, धन प्राप्त हो जाता है। राजा कहने लगे चोर्यम द्यूति प्रिग्रहो भी भवता, अरे तुम चोरी भी करना जानते हो, जुआ भी खेलते हो, इतने सारी बुराइयां। वो भिखारी कहने लगा राजन भ्रष्टस्य का अन्यागति ही, कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए, पतित हो जाए, गिरने लगे, उसके लिए दूसरा मार्ग है ही क्या, वो तो गिरता ही जाएगा, गिरते ही जाएगा। एक बुराई जीवन में आती है, श्रृंखलाबद्ध सैकड़ों बुराइयों को ले आएगी। एक सद्गुण जीवन में धारण करते हैं तो उसके पीछे पीछे अच्छे गुण भी आने लगेंगे, मगर प्रथम सद्गुण को ठीक से पकड़ करके रखना पड़ेगा। अब ये जो वाजस सर्वस्व यज्ञ करने जा रहे हैं कामना से युक्त है। कामना किस बात की, इसलिए कि मैं कह रहा था कि वाजस सर्वस्व लोभ युक्त कामना युक्त व्यक्ति है और क्रोधी व्यक्ति है। इसके पूर्व की घटना आती है, किसी बात पर अपने इसी बालक को जो नचिकेता उसका पुत्र है, पिता ने उसे बोल दिया था कि मैं तुझे यमराज को देता हूं। इस उपनिषद में आने वाली बात तो दोबारा आती है, इसके पूर्व किसी कारणवशात कहा कि तुझे यमराज को देता हूं, और नचिकेता पिता के कहने मात्र से यम द्वार पर पहुंच गया। यमराज ने देखा कि बालक पितृभक्त है, पिता की आज्ञा मान करके मुझे मृत्यु के पास में आया है, ये यम यातना देने जैसा नहीं है, ये तो पितृभक्त है, ये आया है यमलोक में परंतु यम यातना का पात्र नहीं है, क्योंकि इसके कोई पाप नहीं है, पितृ आज्ञा पाकर के आया है, ये तो मेरा अतिथि है, अतिथि का सत्कार किया जाता है। बड़ा सम्मान किया उस बालक का, और स्वर्गस्थ जितना भी वैभव, जो ऐश्वर्य, जो वहां की लीला, उन सबका उसको दर्शन करवाया। जैसे आपका कोई प्रिय मेहमान आए, आप अपना फ्लैट दिखाएंगे, अपना ऑफिस दिखाएंगे, कारखाना दिखाएंगे, अपना वैभव दिखाएंगे। यमराज ने उसको अपना वैभव दिखाया, स्वर्ग लोक का बड़ा सुंदर मोहक दृश्य दिखाया, और उसके बाद में फिर पुनः विदा कर दिया। जाओ पिता को बोलना कि यमराज के पास जाकर के आ गया। जब वो बालक लौट करके वापस पिता के पास चला जाता है, उधर पिता का क्रोध शांत हो गया था, मन में दुख था, मैंने अपने बालक को यमराज के पास भेज दिया। लेकिन यम ने पुनः जब उस बालक को वापस लौटा दिया, पिता बड़े प्रसन्न हुए। उस बालक ने पिता को कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा से और आपकी कृपा से वो स्वर्ग दृश्य का आनंद लेने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इतना सुंदर स्वर्ग लोक है जिसका वर्णन इस उपनिषद में स्वयं नचिकेता करने जा रहा है, करेगा आगे। स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति, न तत्र त्वम न जरया विवेति, उभे तीर्थवासनाया पिपासे, शोकाते गो मोदते स्वर्गलोके। क्या स्वर्गलोक है, वहां मृत्यु का कोई डर नहीं है, न भूख है न प्यास है, न किसी प्रकार का कोई डर है। जो व्यक्ति कामना करता वस्तु उसको उसी समय प्राप्त हो जाती है। मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में आनंद ही आनंद है, बड़ा प्रसन्नता से वहां पर रहता है। और भी वहां के दृश्य आदि का वर्णन किया, तब नचिकेता के पिता के मन में आया, उस स्वर्ग लोक को तो एक बार मैं भी देखूं, मुझे भी वह स्वर्ग लोक देखने की इच्छा है। परंतु कहने लगे, बेटा तुमने यम से पूछा वह स्वर्ग लोक किन साधना से प्राप्त होता है? बालक कहने लगा कि पिताश्री, यम ने बताया है कि जिसने अपने जीवन में सर्वस्व दान किया हो, सब त्याग दिया हो, यहां के भोग को त्याग करके वहां की कामना कर रहा है, यहां के पदार्थों का दूसरों के लिए त्याग किया, वो त्याग रूपी जो सत्कर्म है, उस सत्कर्म के पुण्य प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जब इसी बालक से मुंह से ये उपाय उन्हें प्राप्त हुआ, इसी दृष्टि को लेकर के नचिकेता के पिता वाजस्रवस यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में सर्व वेद सम ददो, जितना उसका अपना स्वयं का धन था वो दान में दिया। अपना स्वयं का धन कितना होता है, अपना अधिकार कितने के ऊपर है, उसका भी एक शास्त्र का विधान आता है। परिवार में चार व्यक्ति है, पांच व्यक्ति है, दस व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, जितने भी है, प्रधान व्यक्ति के पास में जो प्राप्त धन है, उस धन का बराबर व्यक्ति के अधिकार से जितने हैं उतना बंटवारा किया जाता है, विभाजन किया जाता है, और अपना अपना हक सबको दे देने के पश्चात जब उसका विभाजन करता है, क्योंकि विभाजन करने वाला व्यक्ति भी उस परिवार का एक सदस्य है, इसलिए उस धन में से अपना स्वयं का भी भाग अलग किया जाएगा। हर व्यक्ति का जितना अधिकार बनता है उसका धन उसको दे दिया जाता है। वो सब दे देने के अनंतर जो अपना हिस्सा, अपना भाग उसके बचा हुआ है, उसको ही दान में देने का व्यक्ति को अधिकार होता है। जो अपने अधिकार की वस्तु है, अपने भाग की वस्तु है, उसको जब चाहे, जैसे चाहे, जिनको चाहे वो दान में दे सकता है, उसका अधिकार होता है। इसी प्रकार से सारे धन का विभाजन करने के अनंतर वाजस्रवस का भाग जो बचा हुआ है उसको वो दान कर रहा है, सर्व वेद सम ददो, उन सबको वो धन को दे रहा है, दान में दे रहा है। सर्ववेदस का अर्थ यही हुआ कि जो अपने भाग की वस्तु है उसको उसने दे दिया। परंतु देने में एक बहुत बड़ी, देने से पूर्व ही कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति की आसक्ति, उसकी ममता उसको सही निर्णय नहीं करने देती है। इस ब्राह्मण का अपने बालक पर बड़ा मोह था, ममता थी इस नचिकेता के ऊपर, तो ममता होने के कारण जब प्राप्त धन का विभाजन किया जा रहा था तो जो अच्छी वस्तुएं थी, प्राचीन काल का जो धन माना जाता था, गोधन, गजधन, बाजी धन और रत्न धन खानी, ये धन माना जाता था, गौ धन मानी जाती थी, घोड़ा धन माना जाता था, रथ आदि धन माने जाते थे, रत्न धन माने जाते थे, पैसा धन माना जाता था, और जितना भी धन था उसके पास में, अच्छी से अच्छी जो वस्तुएं थी, अच्छी गाय थी, अच्छे घोड़े थे आदि आदि, वो सब परिवार के सदस्यों को विभाजित कर दिया। उन गांवों में ऐसी जो गवें थी जो बूढ़ी हो चुकी हैं, प्रजनन शक्ति समाप्त हो चुकी है, दुग्ध देने की स्थिति नहीं है, मुंह के दांत झड़ चुके हैं, ऐसी जो निकम्मी गवें थी उनको ब्राह्मण ने अपने स्वयं के हिस्से में ले लिया, इसलिए लिया कि मुझे तो दान देना है। और प्रायकर ऐसा समझते हैं कि जो हमारे हमारे काम की चीज नहीं है वो दूसरे को, बंबई का तो मुझे मालूम नहीं, परंतु प्रायकर जब मंदिरों की पेटियां खोली जाती है और उसमें जो कागज के नोट निकलते हैं उनकी शक्लें देखने जैसी होती है, कहीं टुकड़े होंगे तो कहीं उसके ऊपर टेप चिपकी हुई होगी, कहीं कोना टूटा होगा, जो पैसा अन्यत्र नहीं चलता वो मंदिर की पेटी में चलता है। किसके लिए? दान का यही लगता है कि वो नचिकेता के पिता के शिष्य आज तक भी चले आ रहे हैं, वो परंपरा चालू है, ऐसा होता है। इसीलिए ऐसे ऐसे निकम्मे जो गवें थी उसको अलग किया जा रहा है, और दान किसके लिए कर रहा है? स्वर्ग की कामना से युक्त है, स्वर्ग की कामना से युक्त है, इसलिए कहते हैं कि उष्ण है, कामना वाला व्यक्ति है, सकाम यज्ञ कर रहा है, मुझे स्वर्ग प्राप्त हो, कामना से युक्त होकर के यज्ञ कर रहा है, भीतर में पकड़ नहीं गई। यहां का त्याग भी छोटी वस्तु का त्याग बड़ी वस्तु की प्राप्ति के लिए हो रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है वो दान कर रहा है, जबकि दान का यह बिल्कुल विधान नहीं है। दान का तो विधान है कि जो आपको प्राप्त है, जो आपको सबसे परम प्रिय है, उस वस्तु का दान होना चाहिए।